पहला कदम शैतानी नुतफा। यहूदियों के पास कभी भी कोई अपना मुल्क नहीं था और वो आवारा ही रहे हैं। हॉलैंड का एक रिहायशी कानूनी वकील थियोडोर हर्ज़ल, उससे ये सब बर्दाश्त ना हुआ। उसने 1896 में एक किताब मुल्क यहूद में लिखा कि हमें लाजिमन यहूदियों के लिए एक मुस्तकिल हुकूमत तश्कील देना होगी। उसने 29 ता 31 अगस्त की तारीखों में अगले साल 300 बड़े यहूदियों को स्विट्जरलैंड में जमा किया ताकि किस तरह एक यहूदी हुकूमत को बनाया जाए के बारे में बहसों गुफ्तगू करें। मुख्तलिफ ममालिक के बारे में बातचीत हुई लेकिन बिलाखिर फलस्तीन पर सबका इत्तफाक हो गया, और क्योंकि फलस्तीन में यहूदी मुकदसात भी मौजूद हैं, जो अवामी फरेब दही के लिए एक बेहतरीन बहाना करार पाए। हर्ज़ल ने हुकूमत उस्मानी के सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को बहुत से तहाइफ इरसाल किए और साथ ही यूरोपीय यहूदियों के फलस्तीन आने की इजाजत मांगी, जिसे बादशाह ने कबूल नहीं किया। लेकिन हर्ज़ल ने अमरीकी और यूरोपीय यहूदियों की मदद से एक कंपनी बनाई जो फलस्तीन में जाकर रहने वाले यहूदियों की माली मदद किया करती थी। दूसरा कदम चोर साथी। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई। इन हालात में यहूदियों ने जंग को बहाना बनाकर बेशुमार यहूदियों को फलस्तीन मुहाजरत करवाई। जंग के बाद सल्तनत उस्मानी कमजोर पड़ गई और 1916 में साइज पीको करारदाद के मुताबिक फ्रांस और बरतानिया के हिस्से में तकसीम हो गई। फलस्तीन बरतानिया के हिस्से में आया और बरतानवी फौजी वहां काबिज हो गए। बरतानवी वजीर खारजा की कोशिशों से 2 नवंबर 1917 को एक यहूदी बेनाम रिचर्ड को खत लिखा और कहा कि बरतानवी हुकूमत यहूदियों के लिए फलस्तीन को उनके मुल्क बनाने की हिमायत करती है। साथ ही अमरीकी सदर विल्सन ने भी खत की हिमायत कर दी। यहूदियों के अच्छे दिनों का आगाज हुआ। पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा यहूदियों की फलस्तीन की तरफ मुहाजरत शुरू हो गई। अमलाक और जरई अराजी को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया गया। शुरू में पैसे से और अगर कोई मुकावमत करता तो बरतानवी फौज की मदद से जबरदस्ती हासिल कर ली जाती। 25 नवंबर 1920 पहली जंग अजीम के फातहीन ने सान रेमो इटली में ऐलान किया कि यहूदियों को आजाद होना चाहिए और फलस्तीन में उनका अपना मुल्क होना चाहिए। इस करारदाद को अक़्वाम मुत्तहिदा ने भी फौरन लाजिमुल इजरा करार दे दिया और एक यहूदी बेनाम सामाइल को इस काम पर मामूर कर दिया। 1920 में चर्चिल बरतानवी जंग का फाते खुद शरीफ चला गया और सफेद कागज नामी इस्तलाह को बयान करके कहा, हमें हर हालत में कबूल करना होगा कि यहूदी फलस्तीन में आए और अपना अलग और मुस्तकिल मुल्क बनाए। तीसरा कदम शैतान के निशान। 1930 के शुरू में यहूदी मुखालिफ नाजियों ने कुदरत हासिल की। यहूदियों की फलस्तीन में महाजरत के सिलसिले में बेपनाह इजाफा हो गया। इन्हीं सालों में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई और 6 साल मुसलसल जारी रही। जंग के फौरन बाद एक नया खेल शुरू कर दिया गया, होलोकॉस्ट। इज्तमाई तौर पर यहूदियों के कत्लेआम की झूठी कहानियां जो एक नया बहाना बन गया उन यहूदियों के लिए जो अभी तक यूरोप से फलस्तीन ना जा सके थे। देखते ही देखते फलस्तीन में यहूदियों की तादाद 6 लाख से तजावुज कर गई। इस दफा बरतानिया की जगह वो मुल्क यहूदियों की मदद कर रहा था जिसने जंग के दौरान यहूदियों की मदद से नई ताकत और हैबत हासिल कर ली थी, यानी अमरीका। चौथा कदम जमीन पर कब्जा। 14 मई 1948, सब कुछ पहले से तयशुदा था। सुबह बरतानिया ने ऐलान किया, हमारा फलस्तीन पर कानूनी हाकिमियत का वक्त खत्म हो गया है। और इसी दिन वक्त जोहर से पहले यहूदियों ने इसराइल के नाम से अपने मुल्क का ऐलान कर दिया। इसी दिन जोहर के बाद अक़वामे मुत्तहिदा में इस पर वोट डाला गया और सिर्फ चंद ही मिनटों में वोटिंग मुकम्मल हो गई और इसराइल को कानूनी हैसियत दे दी गई। इसकी थोड़ी देर बाद अक़वामे मुत्तहिदा ने बाकायदा ऐलान किया कि सरजमीन फलस्तीन पर एक और मुल्क इसराइल के वजूद को कबूल कर लिया गया है। ठीक 3 मिनट बाद अमरीका और 8 मिनट बाद सोवियत यूनियन ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और इसी तरह फलस्तीनियों से पूछे बगैर उन्हीं की सरजमीन पर एक और मुल्क बना दिया गया और 21,000 किलोमीटर फलस्तीनी सरजमीन पर यहूदी काबिज हो गए। दूसरे दिन मिस्र, उर्दन, शाम, सऊदीया, इराक और लंदानी फौजों ने हमला कर दिया और काफी ज्यादा हद तक कामयाब हो गए, लेकिन अचानक अक्वामे मुत्तहिदा ने साजिशकार लोगों के साथ साजबाज करके 20 रोजा जंग बंदी करवा दी और इस जंग बंदी के दौरान इसराइल को भरपूर तस्लीहाती मदद हासिल हो गई थी, जिसकी बिना पर इसराइल ने 20 दिन बाद अचानक अरबी फौजों को शिकस्त से दोचार कर दिया और पूरी सरजमीन फलस्तीन सिवाय कराने बाख्तरी और गजा काबिज हो गया, यानी दर हकीकत फलस्तीन नामी मुल्क खत्म हो गया और लाखों फलस्तीनी अपने ही घरों से बेदखल कर दिए गए। पांचवा कदम, जख्म जैतून। उन्नीस में साफ की कोशिशों से अरबी हुकूमतों ने इसराइल पर हमले का इरादा किया कि जिसके जवाब में इसराइल ने पहले पहर हमला करके अरबों को शिकस्त दे दी और यहूदियों के हाथों गस्त शुदा फलस्तीन जमीन 3 बराबर हो गई। बिलाखर अमरीकी और यहूदी दबाव के नतीजे में अरब और साफ अहद वफा से पीछे हट गए। सबसे पहले मिस्र, अनवर सादात ने 1978 कैंप डेविड में इसराइल को तस्लीम कर लिया। उसके बाद साफ ने 1992 मैड्रिड में इसराइल को तस्लीम कर लिया। फिर क्या था, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने फलस्तीन पर इसराइली कब्जे को कबूल कर लिया, लेकिन फिर वक्त बेदारी आन पहुंचा था और आज तक इस सरजमीन के मुसलमानों ने गासिब सहयूनियों से मुकाबले को जारी रखा हुआ है और इस मुकावमत और बेदारी के सामने हुकूक बशर के नाम लेवा आंखें बंद किए सर झुकाए खड़े हैं और गासिब सहयूनी हुकूमत की ना सिर्फ मदद करते हैं बल्कि शाबाश देते हैं, लेकिन मुकावमत जारी है और फलस्तीन आज भी इस्लाम का ना खत्म होने वाला हिस्सा है।